सागर सुनी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितो स्वदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन की बुराइयों को दूर करने और अपने जीवन की अच्छाइयों को प्रकट करने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। दूसरा कोई हमारे सामने क्रोध करे हमें अच्छा नहीं लगता। हम स्वयं भी जब क्रोधित होते हैं तब हमारा मन भी कलुषित मन वह भी हमें अच्छा नहीं लगता। कोई हमारे सामने बढ़ चढ़ करके अपनी प्रशंसा करे स्वयं तो उसका वो अहंकार से भरा हुआ व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता। दूसरा हमारे साथ छल कपट करे हमें धोखा दे वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। कोई बहुत लालची हो बहुत लोभ करे उसे भी हम अच्छा नहीं मानते। और ये सब चीजें हमारे भीतर हों तब क्या हम इन्हें अच्छा मानेंगे। दूसरे के भीतर इन चीजों के होने पर हमें ये जरा भी अच्छी नहीं लगती लेकिन हमारे भीतर यही सब होने पर जिस क्षण हमें ये अच्छी ना लगे समझना कि अब अच्छे बनने की शुरुआत हो। अभी तो ये सब जो बुरी चीजें हैं वे ही हमें ठीक जान पड़ती हैं तब फिर इनसे बचने का हम क्यों उपाय करेंगे। हम सबसे पहले इन्हें बुरा समझें तब हमारे जीवन में इनसे बचने की प्रक्रिया शुरू होगी। जीवन में हम दो तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अपने को इस पूरे संसार का केंद्र बिंदु मानकर शेष सारे संसार को अपनी परिधि मानकर हम जीवन जीते हैं तो ऐसा जीवन अहंकार से भरा हुआ जीवन कहलाता है। अपने को केंद्र मानना यानी अपने को ही संसार में सबसे श्रेष्ठ मानना और अन्य जीवों को अपने से कम और छोटा मानना यही तो अहंकार है। और दूसरा जीवन जीने का ढंग वो चाहें तो हम वो अपना सकते हैं। बहुत बड़े समुद्र में जैसे एक बूंद अगर अपने अस्तित्व को समुद्र में ही विलीन कर देती है तो उसका वह अस्तित्व क्षणभर को तो विलीन हुआ मालूम पड़ता है लेकिन वह बूंद स्वयं समुद्र हो जाती है। ऐसे ही यदि हम इस संसार में अपनी उपस्थिति को और लोगों के लिए उपयोगी और लोगों के काम आने के लायक अपनी उपस्थिति को दर्ज करें तो वह जीवन जीने का ढंग, विनयपूर्वक जीने का ढंग कहलाएगा। मृदोर भावो मार्दवम, यह जो विनय का, मृदुता का भाव है, अपनी उपस्थिति से दूसरे का उपकार हो, ऐसा जो भाव है वो सब मृदुता और विनय का भाव है जो हमारे मान कषाय या अहंकार से हमें बचा लेता है। एक बहुत बड़ा साधु जनों का सम्मेलन होना था, एक एक करके उस गांव में सैकड़ों साधु पहुंच गए। गांव छोटा था, साधुओं की संख्या बहुत अधिक हो जाने से स्थान ही नहीं बचा। जो साधुओं में प्रमुख थे वे भी थोड़ी मुश्किल में पड़े कि इतने साधुओं को निमंत्रण तो दे दिया है, अब यहां तो स्थान है ही नहीं। मालूम पड़ा कि एक और बहुत पहुंचे हुए साधु पधार रहे हैं, अब थोड़ी और मुश्किल लगी कि इतने बड़े साधु के लिए भी हम स्थान ही नहीं है तो क्या जवाब देंगे। उन्होंने एक अन्य साधु के हाथ से एक दूध से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ ग्लास उन साधु के पास भेजा। साधु जी सचमुच में साधु जी थे, समझ गए कि आमंत्रण तो सद्भावना पूर्वक दिया गया है लेकिन स्थान शेष नहीं होने से असमंजस हो रही है। दूध से भरा हुआ ग्लास इस बात की सूचना दे रहा है कि अब और भरने लायक जगह नहीं है। दूध तो अच्छा है लेकिन क्या करें, ग्लास की अपनी सीमा है। तो उन्होंने उसी साधु के हाथ से वह भरा हुआ ग्लास लौटाने से पहले क्या किया, जरा से कण उसमें शक्कर के डाले, वॉल्यूम नहीं बढ़ता, वो तो सॉल्युबल है, उसमें ही मिक्सअप हो गई वो शक्कर, दूध को मीठा बना गई और ग्लास के बाहर बाजू में एक सुगंध से भरा हुआ फूल सटा के रख दिया और कहा कि वापस दे देना। जो प्रमुख साधु थे वे उनके इस व्यवहार से चकित रह गए और कहा कि उन्हें सम्मान पूर्वक लाएं। जो अपनी उपस्थिति को अलग से प्रकट नहीं करना चाहता, जो सबके बीच उन सब में मिल करके और वातावरण को सुगंधित बना करके अपना जीवन जीने की भावना रखता है, वास्तव में वो अपने जीवन से अहंकार को हटा करके विनय और मृदुता को अपने जीवन का श्रृंगार बनाता है। वास्तव में ऐसा भाव हमारे भीतर भी आना चाहिए, लेकिन क्या करें, अहंकार का संस्कार आज का थोड़े ही है, ये अभ्यास अनादि काल का है। आज तक किया क्या है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है, फिर भी लगता यह है कि जैसे मैं अपने अस्तित्व को आज तक स्थापित ही नहीं कर पाया, जबकि ये तय है कि अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता और अस्तित्व स्थापित नहीं किया जाता, अस्तित्व तो स्वतः ही कायम रहता है। लेकिन क्या करें, अज्ञानता के चलते अपने अस्तित्व को कायम रखने, उसे स्थापित करने का अहंकार हमारे मन में आ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व तो हमारे अपने गुणों के द्वारा है, और यदि हम अपने उन गुणों को ही नष्ट कर देंगे तो अस्तित्व के लिए खतरा है। कई बार अपन ये सुनते हुए, पढ़ते हुए देखते हैं कि हमारे अस्तित्व को खतरा है, तो कैसा लगता है कि हाँ सचमुच हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भीड़ इकट्ठी करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। अपने अस्तित्व के लिए हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये अपने अस्तित्व को कायम करने और स्थापित करने का ढंग, ये भी हमारा अहंकार से भरा हुआ ढंग है। हम चाहते तो हम अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जो अपने आप में प्रतिष्ठित हो गया, वास्तव में प्रतिष्ठा तो उसी की है। हम किसकी प्रतिष्ठा करते हैं? अरहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि वे अपने आत्मा में स्वप्रतिष्ठित हैं, इसलिए वे हमारे द्वारा प्रतिष्ठा के योग्य हैं। उनकी प्रतिष्ठा अपने आप कायम रहती है। हम तो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के हमेशा चिंतित बने रहते हैं। हम विचार करें कि वास्तव में ऐसी जो हम अपनी प्रतिष्ठा या अपना अस्तित्व, अपनी अस्मिता कायम करने का जो ढंग अपना चुके हैं, क्या वो ठीक है? हमें लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो हमें उसमें परिवर्तन अवश्य करना चाहिए, वरना यह हमारा जो जीने का ढंग है वो हमारे पतन का कारण बनेगा। रावण का अहंकार पूर्वक जीना उसके पतन का कारण बना, द्विपायन मुनि का क्रोध कर लेना उसके पीछे छिपा हुआ अहंकार ही था, क्रोध तो बाद में हुआ, अहंकार था कि मैं इतना महान साधक और सहनशीलता नहीं रही, क्रोध आ गया, उनका पतन भी साथ साथ में हुआ। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो कि अहंकार से भरे हुए व्यक्ति के जीवन को पतन की तरफ ले जाते हैं। अपन सब जानते हैं, अपने भीतर भी अगर ऐसा ही ढंग अपन ने जीने का, अपने अहंकार को ही हमने अपने जीवन जीने का ढंग मान लिया हो, तो उसे छोड़ें। अहम करोति इति अहंकारः, मैं करता हूं, यही जो भाव है वही तो अहंकार है। यहां सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जैसे हमारे नहीं होने पर इनका काम नहीं चलेगा, या हमारी उपस्थिति से ही इन सब का काम ठीक से चल रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब हम नहीं थे तब भी ये संसार ऐसा ही चलता था, और जिस दिन हम इस संसार से विदा ले लेते हैं तब भी ये सब यथावत ऐसे ही चलता रहता है। लगता जरूर है कि जैसे हमारी उपस्थिति ही इन सब के जीवन के लिए चलाने में कारण बन रही है। यह भाव ठीक नहीं है, ये तो भाव ठीक ऐसा है जैसे कि बैलगाड़ी के नीचे छाया देखकर खड़ी हुई बकरी बैलगाड़ी के चलने पर उसी छाया के नीचे नीचे चलने लगती है और विचार करती है कि जैसे यह पूरी बैलगाड़ी मेरे ही सहारे, मेरे ही आश्रय चल रही। अपन भी तो ऐसा ही विचार कर लेते हैं कि यह मेरा परिवार मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, यह समाज इसका भी मैं कर्ता धर्ता हूँ, मैं नहीं हूं तो ये सब ना चले, या कि कई लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, यह देश इसको मैं ही चलाता हूं, ये सृष्टि इस सृष्टि का कर्ता भी स्वामी भी मैं ही। यह जो बाह्य संयोगों में ममत्व का भाव है वही तो अहंकार है। एक व्यक्ति के यहां पर एक मेहमान पहुंचे तो उस व्यक्ति ने इनको बुलाया तो था नहीं, वो ऐसे ही आए थे। उस व्यक्ति ने ज्यादा कुछ उनके सम्मान में न खड़ा हुआ न कहा कि आओ, तो वो जो व्यक्ति थे उनको थोड़ा मुश्किल सा लगा कि अरे वाह, इन्होंने तो हमारा सम्मान तक नहीं किया। भैया कोई सम्मान करे इसमें तो अच्छा ही है, क्योंकि सम्मान और जो मेजबान था वो सम्मान देने के मूड में नहीं था, अब कैसे बने काम। यही तो उलझन है अपने जीवन में भी। अपन चाहते कि जहां जावे सोते हमारी रीझ बूझ हो गए, पूछे लोग हमें हाँ। अब बड़ी हुए कौनों की पूछ तो समर्थ नहीं है, दो आदमी पूछ संभाल भी जाने पड़ते हाँ, बड़ी पूछ में तो दिक्कत होती फिर उस। तो देखो पशु से तो अपन ऊंचे उठ गए, मनो पूंछ ज्यों की त्यों रही, उनकी तो साफ साफ पीछे लगी हुई पूंछ दिखाई पड़ती है। अपनी अहंकार की पूंछ किसी को दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जानते सब हैं, समझ में अनुभव में सबके आती है। अपन को इससे ऊपर उठना चाहिए। शायद वे मेजबान उस मेहमान को यही समझाना चाह रहे होंगे तो कुछ नहीं बोले। उस मेहमान ने कहा कि शायद आप मुझे नहीं जानते, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपको पहचानता नहीं हूं। अब अपना परिचय देना पड़ा। वो तो सोच रहे थे कि जैसे मुझे सारी दुनिया जानती है, अब ये एक और इंसल्ट हुई कि परिचय देना पड़ा। जैसे तैसे उनने बताया कि हम ये हैं, इस तरह के हैं, तो उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। नहीं ध्यान दिया तो अब तो बहुत मुश्किल होगी। अगर अपन नई गाड़ी लेके आवे और ओ में बैठ के बाजार में घूमे और को जाने के वे के कवे लई, तो यह सो लगत के कहां फेंके आए, पूछी तो नहीं है कोई ने लई की लई। हमने सोच रहे थे कि सब पूछे कि जो नव मॉडल कवे ले आए जी, बड़ी दिक्कत हुई। माने कितना मुश्किल होता है, किस चीज के चलते, अपने अहंकार के चलते और कुछ नहीं। चीज तो उपयोग के लाने आई थी, सो उपयोग करके आनंद ले लेते, लेकिन उपयोग से ज्यादा उसको जो अपन अपनी प्रतिष्ठा का साधन बना लेते हैं वो हमारे लिए दुखदायी। ये मान कषाय यही करती है, करहीं नीच गति जगत में, मान महाविष्णु। हमारा जितना अपमान और पतन इस मान कषाय के चलते होता है वो किसी से छिपा नहीं है। सोचते तो हैं कि मान मिलेगा सम्मान मिलेगा, लेकिन मान कषाय के चलते आज तक किसी को भी मान सम्मान न मिलके अपमान और तिरस्कार ही मिला है। ये अपने जीवन में अपन अनुभव करते हैं पर सचेत नहीं होते। अब जब उन्होंने और थोड़ी अपनी प्रशंसा की बातें कहीं, अपनी डिग्री बताई, अपने और जो जो भी उपलब्धियां हैं वो बताई, तब भी वो जनाब चुप ही बैठे रहे। तो इन्होंने फिर कहा कि आप क्या समझते हैं? तो मेजबान ने मुस्कुरा के कहा कि आपको हम बहुत बड़ा समझते हैं, और अगर आपको कुर्सी में संतोष नहीं है तो ऊपर एक और धर के बैठ जाओ, टेक टू चेयर्स, दो कुर्सी ले लो आप, लेकिन इससे ज्यादा अहंकार करना व्यर्थ है। ये चीज सहसा समझ में नहीं आती। हमें विचार करना चाहिए कि जितना हमने सम्मान पाने की कोशिश की उतना ही हमने अपना तिरस्कार देखा है अपने जीवन में। जब मैं किन परिणामों से कौन सी पर्याय मिलती है इस बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी कि मैं सूकर की पर्याय कैसे मिलती है इस बारे में जानूं। तो उसमें लिखा था कि सूकर की पर्याय मिलने का एक ही कारण है कि पूर्व जीवन में अत्यंत अहंकारी होकर के त्यागी व्रती और सज्जन पुरुषों की निंदा करी, तिरस्कार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज इतना तिरस्कृत जीवन जीना पड़ रहा है कि कोई छूना भी पसंद नहीं करता। ऐसा भी कर, और आज अपन अपने मान कषाय और अहंकार के चलते और कितना दूसरे के गुणों से ईर्ष्या कर लेते हैं, और कितना गुणवान व्यक्ति का भी निरादर या अपमान और तिरस्कार कर देते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हम इस अपनी आदत को बदलें और अपने जीवन में इस अहंकार को घटाएं, तो हमारा जो स्वाभाविक मृदुता का और विनय का भाव है वो हमारे भीतर सहज ही प्रकट होगा, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बनेगा। मन, वाणी और शरीर तीनों हमें मिले हैं, हम उनका अहंकारवश उपयोग करना चाहें तो मन में कठोर होकर के और दूसरे के प्रति अपने व्यवहार में कठोरता ला सकते हैं। हम चाहें तो मन में अच्छे विचार ला करके मन की विनय को कायम रख सकते हैं। हम चाहें तो कठोर वचन के माध्यम से, अपनी वाणी से दूसरे का अहित कर सकते हैं, और हम चाहें तो वाणी की मधुरता से स्वयं का भी जीवन और दूसरे का जीवन भी अच्छा बना सकते हैं, और हम अपने शरीर के द्वारा दूसरे का तिरस्कार करके और अपना और दूसरे का अहित कर सकते हैं, और हम चाहें तो दूसरे की मदद करके अपने शरीर से दूसरे को सहारा दे करके और अपने और दूसरे के जीवन को अच्छा बना सकते हैं। चुनना हमें, दोनों में से हमें क्या चुनना है? विचारों की श्रेष्ठता मन की विनय है, वाणी की मधुरता वाणी की विनय है, शरीर के द्वारा दूसरे की मदद करना, दूसरे को सहारा देना, ये शरीर की विनय है। हम तीनों चीजों के माध्यम से अपने उस विनय गुण को अपने भीतर प्रकट कर सकते। कोई बहुत कठिन की चीज नहीं लगती है अपन को, क्योंकि अभ्यास नहीं है इस वजह से कठिन जान पड़ती है, पर हम थोड़ा सा अभ्यास करें तो इस चीज को आसानी से, क्या कहते हैं अपन लोग, पढ़ते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, कितनी बातें तो बचपन में और खेल खेल में स्कूल में अच्छी अच्छी अपन को सिखा दी जाती हैं, उनका हम जीवन में अमल ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ सुनने सुनाने तक ही, कहने कहलवाने तक ही सीमित रह जाती हैं, वो जीवन का अंग बन जाएं, तो ये सब चीज़ें तो हमें बचपन से ही सिखाई गई हैं कि अपने पूज्य पुरुषों की विनय करना, क्योंकि विनय और मृदुता ही हमारी स्वाभाविक अवस्था है। हम गुणी जनों को देख करके अपने मन में गदगद हो जावें, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जावे। अभ्यास तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि गुणी जनों को देख करके मन ईर्ष्या से भर जाता है, हम गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं, और यहाँ तक कि हम उन गुणवान व्यक्तियों का तिरस्कार भी कर बैठते हैं। भैया गुणवान हो चाहे गुणवान ना हो, कमती हो, तिरस्कार तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को असाधारण मान करके दूसरे को साधारण समझता है और उसका तिरस्कार करता है, यही उसकी अत्यंत साधारणता है। और जो व्यक्ति जितना साधारण होकर के अपना जीवन जीता है, यही उस व्यक्ति की असाधारणता है। कल कोई व्यक्ति कह रहे थे कि यहीं पर समाज में एक व्यक्ति से मिलना हुआ, उन्होंने कितनी उपलब्धियां की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे सामान्य लोगों के जैसा ही अपना जीवन जीते हैं। मिलने पर कभी ये नहीं कहते हैं कि मैंने ये प्राप्त किया है, और कहीं भी बैठ जाते हैं, कभी भी आगे की पंक्ति में आकर के मैं बैठूं या मुझे बिठा ला जाए, ऐसा भाव नहीं होता है। ये उदाहरण देख करके मन कैसा हो जाता है, स्वयं भी उससे प्रेरणा मिलती है कि हाँ, सचमुच ये सांसारिक पद प्रतिष्ठा और उपलब्धियां ये मेरे जीवन को अहंकारी बना देवे, तो इनके प्राप्त होने का हमारे लिए क्या लाभ मिला, इससे तो हमारा अहित ही हुआ। होना तो ये चाहिए कि जितनी जितनी मेरे जीवन में उपलब्धियां हों, उतना उतना मैं कृतज्ञता और विनय से भर जाऊं, जितना जितना मुझे औरों के द्वारा मान सम्मान प्राप्त हो, उतना मेरा मन कृतज्ञता से भर जाए, विनय से भर जाए, और अधिक मैं अपने गुणों को बढ़ाने के लिए विचार करूं कि देखो गुणों की प्रशंसा होती है, इसलिए मुझे अपने गुण बढ़ाना चाहिए। इससे भैया जिसने सम्मान दिया उसका भी लाभ हुआ, और जिसने सम्मान पाया उसका भी लाभ हुआ। सम्मान पाने वाला अगर कृतज्ञता से भर करके, विनय से भर करके अपने गुणों को और बढ़ावे, तो उसका हित हो गया, और जिसने सम्मान दिया है उसने गुणों को सम्मानित किया है, तो वे गुण और बढ़ गए, तो उसका सम्मान करना सार्थक हो। वास्तव में तो ऐसा ही अपने अंदर भाव आना चाहिए। कोशिश करें अपन, नहीं आ पाता है ये बात जुदी है, लेकिन कोशिश तो अपने को करनी चाहिए। दिन भर में देखें अपन कि कब कब कोई हमारा सम्मान करता है, तो हमारा मन अहंकार से भरता है या कृतज्ञता से। ऐसे ही जब हम किसी को सम्मान देने का भाव बनाते हैं, तो हमारे मन में उसके गुणों के प्रति प्रशंसा का भाव आता है कि नहीं आता है, या कि हम अपने किसी स्वार्थ बस उसे सम्मानित करते हैं, दोनों ही चीज है। हम सम्मान पाते हैं तब अहंकार कर लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। जब हम दूसरे को सम्मान देते हैं किसी स्वार्थ बस, वो भी ठीक नहीं है। हम सम्मान दें तो उसके गुणों को और बढ़ाने के लिए, और हमारा स्वयं का सम्मान जब होता है तो हम अहंकार से न भर के कृतज्ञता से भर जाएं। इस तरह हम अपने जीवन को मृदुता से और भर सकते हैं, अपने जीवन को विनय से सजा सकते हैं। बहुत छोटा सा एक उदाहरण आपको दूं, शायद बात समझ में आए। वैसे तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, पर आज मेरा मन उस एक अपने बहुत प्रिय उदाहरण को देने का है, जो मैं कभी कभार देता हूँ। मेरा मन भी उस उदाहरण को देख करके सुन करके विगलित हो जाता है कि सचमुच हमारे अपने जीवन में हमने क्या कमाया, थोड़े से पद प्रतिष्ठा, थोड़ी सी उपलब्धियां, और वे भी हमारे अहंकार में बढ़ाने में कारण बन गए, तो हमने क्या पाया। हमने तो जो था उसे मानो और खो दिया। एक गरीब व्यक्ति गांव से चलकर शहर में आया किसी काम की तलाश में, दो पैसे काम करके कमाऊंगा तो जीवन ठीक से गुजर जाएगा। एक सेठ के यहां पर उसने जाकर के विनयपूर्वक कहा कि सेठ जी, कोई काम आपके यहां पर मुझे मिल जाएगा। सेठ तो होना चाहिए, अच्छा है, लेकिन सेठ होने का अहंकार निर्मल। व्यक्ति बड़ा है, सो से बड़ा तो होना ही चाहिए, लेकिन बड़े होने का अहंकार निर्मल, तभी उसका वो बड़ा होना